ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریفیں ہیں کہ جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا جس نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت دی چند لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں انسان نہ بناتا تو ہم کیا ہوتے اگر میں بتانے سے پہلے آپ سے پوچھتی کہ آپ کے پاس سب سے بڑی نعمت کیا ہے تو آپ میں سے بہت ساری بہنوں نے کہنا تھا کہ ہمیں مسلمان بنایا ہمیں بچے دیے گھر دیے شوہر دیا الحمدللہ ماں باپ دیے بھائی بہن دیے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری نعمتیں ہیں یہ اللہ کی رحمتیں لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھیں تو سب سے پہلی نعمت کیا یہ نہیں ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا آپ اور میں کچھ بھی تو ہو سکتے تھے ہمارا تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے نالی میں رینگتا ہوا کیڑا بنا دیتا بچھو بنا دیتا سانپ بنا دیتا کھیچوا بنا دیتا کوئی گندگی میں لپٹا ہوا مٹی میں کھیلنے والا جانور بنا دیتا آپ کی میری کوئی اوقات نہیں تھی کہ ہم اللہ کو منع کرتے اللہ کا شکر کیجیے سوچ کے ساتھ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بھی وہ جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ میں نے انسان کو سب سے بڑی تقویم میں پیدا کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ مقام دیا پھر آپ دیکھیں کہ انسان بنانے کے بعد جو اس کا بہت دوسرا رحم ہے کہ اس نے ہمیں صحیح سالم پیدا کیا آپ چند سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ آپ کی میری زندگی میں اگر کوئی کمی ہوتی ایک آنکھ نہ ہوتی اور اگر خوبصورت آنکھیں نہ ہوتی تو ہم اس دنیا کو دیکھتے ہمارے کان نہ ہوتے تو کیا ہم اپنے بچوں کی آوازیں سنتے اور جھرنوں کا بہنا سنتے اگر ہماری یہ زبان نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا کب ہم سب آپ اور میں اپنے اوپر لے کر سوچے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عقل نہ ہوتی مجنو دیوانے منہ سے رال گر رہی ہوتی ٹپکتی لوگ ہم پہ ہنستے یہ سب تو بہت بڑی چیزیں ہیں یہ تو زندگی کا حسن ہے میں تو جانتی ہوں کہ ایک ایسا شخص ہے دنیا میں کہ جو اپنی پلکیں نہیں جھپک سکتا یہ جو ہماری آپ کی ابھی تھوڑی دیر میں کتنی دفعہ جھپکی گئی صبح سے شام تک کتنی ہزاروں لاکھوں دفعہ جھپکتے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اگر ہمیں خود اس کو جھپکنا پڑتا آج بھی دنیا میں ایک ایسا شخص موجود ہے کہ وہ پلکیں نہیں جھپک سکتا اس کے یہ مسلس کمزور ہیں یہ جو ہوتے ہیں और वो खुद हाथ से इसको हिलाता है, ना हिलाए तो पानी आएगा, जाले आएंगे। और एक मौके पे जब दूसरों ने पूछा गया कि बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी की क्या ख्वाहिश है, सबसे ही पूछा, तो उसने कहा मेरी ख्वाहिश है कि मुझे एक दफ़ा ऐसा मौका मिले कि मेरी आंखें बगैर किसी मुश्किल के खुद ही छपकने लगे। तो मैं सोच रही थी कि उसने अपनी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश उस दौलत की नज़र कर दी जो आपको मुझे बिन मांगे मिली हुई है, और शौहर भी नहीं है। तो अल्लाह की नेमतों को हम गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाइन तो दुनिया मत अल्लाह ही ला तुसूखा, अल्लाह की नेमतों को तुम अगर गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। तो इन्हीं नेमतों में से एक नेमत ज़िंदगी की नेमत है। अल्लाह ताला ने आपको मुझे बड़ी मुख्तसर गिनी चुनी ज़िंदगी देकर भेजा। हम तो ज़िंदगी को सालों में गिनते हैं ना, बच्चा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, लेकिन एक जुमला याद रखिए कि अल्लाह के हाँ हमारी ज़िंदगी सांसों में लिखी हुई है। जब हम एक सांस लेते हैं, अभी मैंने ये बात की, इसके दौरान फिर एक सांस लिया, फिर दूसरा सांस लिया, तो मेरी ज़िंदगी का एक सांस कम हो गया। अल्लाह ताला ने आपको मुझे सांसों की ज़िंदगी गिन के दी है, और जब दुनिया से जाने का वक्त आएगा, एक सांस में भी कोई इजाफा या कमी नहीं कर सकता। सारी दुनिया के डॉक्टर्स अगर हमारे फोरम पे खड़े हो जाएं, एक सांस बढ़ा नहीं सकता। और सारी दुनिया दुश्मन होके हमें मारना चाहे, तो हमारी ज़िंदगी का एक सांस कम नहीं कर सकते। जब आप और मैं इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी लेकर आए हैं, तो फिर इस ज़िंदगी को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, ये तो अल्लाह ने हमें खुद बता दिया। आप और मैं इस दुनिया में क्यों भेजे गए थे? आप सब ने आदम और इब्लीस का किस्सा कई बार पढ़ा। वइस काल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और जब तेरे रब ने कहा कि मैं एक इंसान बनाने वाला हूँ, यानी फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला ने ये चीज़ रख दी कि अब दुनिया में एक नई मखलूक आएगी और उसका नाम इंसान होगा, तो फरिश्तों के कुछ सवाल थे कि अल्लाह ताला क्या ज़रूरत है, हम जो हैं इबादत करने को, तेरी तस्बीहात भी करते हैं, तो भला इंसान क्या करेगा? लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें आपकी मेरी साइड लेकर कह दिया कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सवाल पैदा होता है कि फरिश्ते क्या नहीं जानते थे और अल्लाह जानता था, तो पहली बात है कि अल्लाह को ही पता है। लेकिन हमें इतनी बात समझ आती है कि अल्लाह ने इंसान को एक आला मकसद देकर भेजा। अल्लाह ताला ने इंसान को तस्खीरे कायनात के लिए भेजा, और लफ्ज़ खलीफा कहकर अल्लाह ताला ने ये बात दे दी कि इंसान दुनिया में अल्लाह के नाम को नाफिज करेगा। अल्लाह का क्रिएशन प्लान, इस दुनिया में क्या करना है, कैसे जीना है, क्या करना है, ये इंसान करेगा। आप देखिए कि आप और मैं हाथ में तस्बीह ले लें, अभी भी ले सकते हैं इस वक्त, अब आप और मैं तस्बीह पर 1 घंटा कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, मेरा ले कई लाखों दफ़ा हम सुबहान अल्लाह कह लेंगे, कई लाखों दफ़ा हम अल्लाह अकबर पढ़ लेंगे, कई दफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ करने से ही सारे काम होते, तो बाकी फिर इंसान की तख्लीकी ज़रूरत नहीं थी। अगर अल्लाह ताला ने आपको मुझे सिर्फ तस्बीह पर अपना नाम जपने के लिए भेजा होता तो काफ़ी था। हम कहते नहीं, शायद अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा कि हम उसकी इबादत करें, नमाज़ पढ़े, रोज़े रखें, हज करें, तो उसका भी जवाब मौजूद है। हदीस में आता है कि इन आसमानों के ऊपर एक उंगली बराबर, यानी इतनी सी पोर, एक उंगली बराबर जगह भी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे कोई फरिश्ता ना हो और वो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत ना कर रहा हो। कि बाज़ दफ़ा उनकी इबादत के दौरान जो मूवमेंट होती है, तो चरचराहट की आवाज़ें आती हैं, जैसे बहुत तंग बैठे हो ना लोग, या नमाज में तरावी में आप देखिए कि करीब करीब खड़े होना पड़ता है, और जब रुकू से सजदे में जाते हैं तो जगह की कमी का एहसास होता है। तो पता क्या चला कि इस ज़मीन पर तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाले भी बहुत सारे हैं। अल्लाह की तारीफ़ें करने वाले कंकर, पत्थर, टुकड़े, पहाड़, दरिया, सूरत बनी इसराइल में आता है कि सभी तस्बीहात करते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ तो मखलूक कर रही है, इंसान का काम कोई बहुत बड़ा था। आप सोचिए अपने ऊपर, आप और मैं आ जाए ना, किसी मकसद से आए, कहीं भी जाते हैं हम मकसद से जाते हैं ना, इवन घर में फ्रिज खोलते हैं तो कोई मकसद ही होता है, वॉशरूम कोई बगैर मकसद के तो नहीं जाता ना। जितनी दफ़ा गाड़ी जाती है, वो छोटा मकसद है या बड़ा है वो एक अलग बात है, लेकिन पर्पस ज़रूर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज इस शहर बल्कि इस मुल्क के रहने वालों को भूल रहा है, आपको पता है मेरे आपके इर्द गिर्द ज़्यादा लोग कौन से हैं, वो कहते हैं ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं है, देर इज़ नो पर्पस ऑफ लाइफ, देर इज़ नो गॉड। एथियस कहते हैं खुद को, दहरिये कहते हैं, वो कहते हैं ज़माना दहर है, मदर नेचर है। अगर ये सब सच होता तो ये बताइए कि ये कायनात जो आपके मेरे सामने अपनी खूबसूरतियों के साथ अल्लाह ने पेश की, आखिर इसके बनाने का मकसद क्या था? अल्लाह ताला ने इसको बनाया, फिर एक बच्चा दुनिया में आने तक कितने मरहलों से गुजरता है, जो माएँ हैं बेबीज वाली अभी नया नया याद होगा उनको, कितना मुश्किल है बच्चे का पेट में रखना, फिर उसको जन्ना और फिर उसके बाद दूध पिलाना। क्या ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हर दिन हमारी ज़िंदगी में एक सुबह आए और कुछ घंटे के बाद शाम आ जाए, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दियों के बाद गर्मी, समर और समर के बाद विंटर, और इस तरह ऑटम और बहार के गुन गाते हुए चले जाएं? ये तो कोई बात नहीं। फिर आप देखिए कि इस आसमान को जब हम देखते हैं तो ये कितने साल पुराना है, आप मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सूरत मुल्क में अल्लाह ताला ने दावत दी है, अपनी निगाह को घुमा कर देखो तो एक बार नहीं, उमर जिल बसर करसर हसीर, कि एक बार नज़र फेर लो वापस आ जाएगी उदास होके, थक जाएगी तुम्हारी नज़र, दोबारा भेजो। फहल तरा मिन फतूर, क्या तुम्हें इस आसमान में एक झोल एक शगाब कोई कहीं से सुराख दिखता है? तो नहीं है ना। इतना पुराना आसमान, ये ज़मीन जिसके ऊपर मैं और आप हैं सदियों से ऐसी बिछी हुई है, ये बेजान चीज़ें हैं। सूरज को देखिए कब से है, चांद कब से है, तो जिसके लिए बनाया गया सब कुछ वो 60-70 साल में चला जाए, एक लॉजिकल बात है। इंसान की उम्र बाकी मखलूकात की नस्बत बहुत छोटी है, 60 नहीं 70, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्र है तो 60 और 70 के बीच में है। जो आपकी उम्र मुबारक थी 63 ईयर के करीब, वही उम्मत की भी उम्र है। तो जब इतनी बड़ी कायनात खड़ी की गई उस इंसान के लिए, तो उसको तो फिर ज़्यादा जीना चाहिए। ये वो पॉइंट है जो बंदे को सोचने पे माइल करता है कि ज़िंदगी के बाद एक नई दुनिया बसाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मुस्लिम मेरा आपका तो ईमान है कि मर के जन्नत या जहन्नम। दुनिया के बहुत सारे मज़ाहब में मरने के बाद का तसव्वुर मौजूद है, कोई स्वर्ग कहता है और कोई नर्क कहता है, कोई कहता है जाएंगे तो पैराडाइज में जाएंगे तो कोई कहता है हेल में जाएंगे। लेकिन मेरे आपके लिए एक क्वेश्चन है, जब ये ज़िंदगी गुजार कर मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरे साथ वहाँ क्या होगा? अगर अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ना भेजता तो ज़ाहिर है कि ये कुरान नाजिल ना होता, हदीस का एक लफ्ज़ भी मेरे आपके कानों से ना गुजरता, तो हमें कौन बताता कि कल क्या होगा? ज़रा सा सोचने की बात है। जब हमें पता ही ना होता और हम मरते और अचानक कब्र में मुनकर नकीर आ जाते, कब्र में एकदम हमारे नेक और बदामाल खड़े हो जाते, कब्र में आते एकदम सवाल जवाब शुरू हो जाते, मन रब्बू का मन दीनों का मन रसूलों का माँ दीनों का, हम परेशान हो जाते। फिर जब क़यामत आती है एकदम धमाका होता बहुत ज़ोर का, तो हम सटपटा जाते कि ये क्या हो रहा है, और फिर कब्र से निकल कर सबको हशर में जाना पड़ता जो मराहिल हम सब जानते हैं। अगर हमें ना बताए जाते और ये सब कुछ अचानक हो जाता तो आप मुझे बता सकते हैं हमारे लिए वहाँ कितनी परेशानी की बात है? बगैर बताए इम्तिहान ले ले उस्ताद कैसा लगे। मैं कहती हूँ आप सिस्टर्स मेरे लिए तो इतनी भी मिसाल काफ़ी है कि बगैर बताए 10 मेहमान इकट्ठे घर में आ जाए। हर वक्त तो घर में दूध नहीं होता, हर वक्त हम इस हाल में भी नहीं होते कि किसी को वेलकम करें। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त ये भी एक नेमत है कि अल्लाह ने अपना प्यारा रसूल भेजा, और उस रसूल के कलबे अथर पे इतनी प्यारी किताब भेजी। कुरान क्या है? ये हमें आखरत की खबरें देता है। हम जब मरेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हम जब कब्रों में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, पुल सरात कैसा है, मैदान हशर में क्या होगा, आराफ पे कौन खड़े होंगे, और कुरान क्या है ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका, मैनुअल ऑफ गाइड। आप में से जो सिस्टर्स ड्राइविंग करती हैं क्या ऐसे ही लाइसेंस मिल गया? कितने आवर्स आपने पहले सीखा, फिर आपने कितने प्रोवे दिए, टेस्ट दिए, फिर एक दो कोशिशों के बाद आप पास हो गई, फिर आपको उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसा खुट दे दिया कि अब आप चला लीजिए। सवाल पैदा होता है कि एक छोटी सी रोड पे निकलने के लिए आपको इतनी तैयारियां कराई गई, तो ज़िंदगी की इस रोड पे इंसान बग़ैर तैयारी के बग़ैर किसी प्लानर के आ जाए, ये तो बड़ी हैरत की बात है। अब अगली बात ये, कुरान में तो सब कुछ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बता दिया, लेकिन हम कितना समझें? आपने मैंने इस कुरान को कितना समझा? जब आपके मेरे सामने कुरान की तिलावत चलती है तो हमें कितना समझ आता है? ये सवाल आपने अपने आप से करते हैं, मैं आपसे नहीं कर रही, मैं तो खुद से करती हूँ। मैं उर्दू में बात कर रही हूँ आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब अपनी पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं। जो नहीं सुन पा रहे वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह खामोशी और सुने। अगर आपको मेरी ये बातें समझ ना आती, क्योंकि मैं इस वक्त फ्रेंच में बात कर रही होती या मैं इंग्लिश में बात करती, तो क्या आप फिर भी यहाँ ऐसे ही बैठे रहते? क्या आपका दिल लगता? थोड़ी देर के बाद आप उठ के कहते, ज़रा मैं बाहर से एक चक्कर लगाऊँ। फिर आप कहते, यहाँ बैठ के मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो फिर मैं क्या करूं? दिल कब लगता है? जब अपनी जुबान में बात की जाए, फिर आई कांटेक्ट होता है। आमने सामने क्यों बिठाया जाता है? दर से पहले कहा जाता है कि आप सही जगह पे बैठी, क्योंकि आपकी गर्दन मुड़ जाएगी अगर आप बहुत करीब बैठेंगे। आपको पलट के देखना पड़ा तो आपका हो सकता है मजा भी ना आए। ये सारी चीजें इंसानों के इंसानों के साथ हैं, तो आप बताइए कि अल्लाह के साथ मामला करते वक्त आपके मेरे लिए ये मामला नहीं है कि कुरान पढ़ा जाए और हमें समझ आए। अभी सुनी है जो तिलावत हमने, ये सूरह हामीम सजदा की आयतें, अभी चंद दिन पहले यानी इसी मंथ के 2 वीक पहले हमने अपने स्कूल में नूरुल कुरान में, जो सिस्टर्स आप में से जानती हैं, लिंदेबर्ग पे एक स्कूल है हमारे पास, तो वहाँ इन आयतों की तफसीर की है। यकीन करें कि उस वक्त जो दिल की कैफियत हो रही होती है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं होती। आज भी मैं वही स्कूल से ही आई हूँ। आज सुबह हमने सूरत अल अहकाफ पढ़ी है। आप शायद बहुत कम लोगों से सूरत का नाम भी सुनेंगे। ना कभी इसका किसी ने वजीफा किया, ना कभी किसी ने इन सूरतों के ख़त्म पढ़े। अमूमन हमारे यहाँ तो चंद सूरतें मशहूर है ना, सूरत यासीन, सूरत अर-रहमान है, सूरत अल-वाक़िया है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम 30वां पारा कसरत से पढ़ते हैं। सूरत बकरा भी काफ़ी पढ़ी पढ़ाई जाती है। लेकिन कुरान की 114 सूरतें, 114, जिसमें कुछ बड़ी कुछ छोटी, कुछ मक्की कुछ मदनी, जो आज सूरत अल-अहक़ाफ़ थी ना, उसका शुरू हर सूरत से पहले कब नाजिल हुई, उस वक्त अल्लाह के नबी के क्या हालात थे वो बताए जाते हैं। मैं अगर अभी खामोश होकर सिर्फ वो प्ले कर दूँ, मेरे कंप्यूटर में है अभी भी इस वक्त वो, 15 से 20 मिनट मैंने उनको सूरत का ज़माना नज़ूल बताया, यकीन करें आंखें भीगी, हम रो रहे थे। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के गम के साल, आमुल हुज़न, आपकी बीवी का इंतकाल हो गया, आपके चचा का इंतकाल हो गया, मक्का का घर घर आपका दुश्मन, कत्ल की साजिशें, कोई घर आपको बना देने को तैयार नहीं। उससे पहले 3 साल शाबे अबी तालिब के अंदर कैद कर दिए गए, अनाज पहुंच नहीं रहा। जो मक्का में काफले आते थे तो बड़े बड़े सरदार उस काफलों को बाहर रोक कर कहते थे, जितना महंगा कर सकते हो बेचो, मुसलमान तुम्हारे पास आकर कोई सौदा करे तो तुम उसको ना देना, हम खरीद लेंगे, इतनी ऊंची कीमत मांगो कि ये बोले ना। और सिर्फ हज का सीजन जब आता था तो मुसलमान उस घाटी में से निकल कर छुपते छुपाते बाहर जाते, कोई अनाज, कोई गल्ला, कोई ऐसी चीज़ें जमा करके लाते और उससे अपने बच्चों का पेट पालते। घाटी ऐसे समझ लीजिए जैसे पहले दौर में किले होते थे ना, बड़े बड़े ऊंची ऊंची दीवारों में, और वो एक अंदर ही अंदर शहर बन जाता है। लोग जब उस घाटी के इर्द गिर्द से गुजरते थे ना, तो बच्चों और औरतों के रोने की आवाज़ें आती थी। और वहाँ 3 साल के अंदर वो वक्त तक आ गया कि लोगों को कई दफ़ा दरख्तों के पत्ते खाने पड़े। साहबा कहते हैं कि जब हम कज़ाए हाजत के लिए जाते थे तो जिस्म में से बकरी की मेंगनियों की तरह की गंदगी निकलती थी कि जो खाते थे। और वो दिन थे जिसमें हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सेहत ख़राब हो गई, और उधर से निकलते एक के साथ ही अगले साल उन्हीं कुछ महीनों में दुनिया से चली गई। तो जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमें अल्लाह के नबी पे प्यार आ रहा था, पहली बात है। फिर हमें ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये कुरान क्या खूबसूरत दौलत है कि जिसको समेटने के लिए अल्लाह के नबी का दुश्मन सारा ज़माना हो गया। आप देखिए कि अल्लाह के नबी से प्यार तो बहुत था। आज मैं और आप कहते हैं ना, मक्का वाले मुशरिक, मुशरिकीन है मक्का, कुफारे मक्का, ये सुनते हैं ना। मदीना के अंदर कोई और लोग थे, लेकिन आप कभी उस दौर के किसी एक शख्स से जाकर पूछें, सुनाओ भाई कौन हो, तो आप कहते हो क्या कहता था, मुसलमान हो जी, किसके उम्मती, किसकी नस्ल से, वो कहते थे इब्राहिम की नस्ल से, ताल्लुक किससे है, कहते थे इस्माइल के ताल्लुक से, जुबान से, नाम से, लफ्जों से वो अपने आप को मुसलमान कहते थे। हज करते थे, आप पढ़ते हैं, हज करते थे। अल्लाह के नबी के बाप का नाम अब्दुल्ला था और अब्दुल्ला मुसलमानों का नाम है, आपकी माँ का नाम आमिना था, आमिना मुसलमान नाम है, तो क्या समझ आई? आपके दादा अब्दुल मुतलिब खाना काबा में बैठकर वहां फैसले करते थे, हाजियों को पानी पिलाते, सत्तू घोलते, तो ये तो सारे मुस्लिम्स के रिचुअल्स हैं। मैं बहुत सोचा करती थी जब मैंने कुरान नहीं पढ़ा और सीरत नहीं पढ़ी जैसे अब पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त मैं सोचती थी कि खराबी किधर है। बस यही एक चीज़ हमें समझ आती थी कि उन्होंने बुत बनाए हुए हैं, ऐसे ही था ना। अब बुत के लफ्ज़ के साथ आज हमारे जिन में एक खास मजहब आता है, हर मजहब अपनी जगह अपने आप को हक पे कहता है। लेकिन ये नहीं पता था मुझे भी, जो बात इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूँ, कि आज हम देखें ना, अगर हिंदू को हिंदू कहे तो वो माइंड नहीं करेगा, बुत की पूजा करने वाले को कहे कि तुम इस बुत की पूजा करते हो, वो माइंड नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए वो ठीक है। अगर स्लीप की कोई पूजा करता है तो उसको बुरा नहीं लगेगा। बट मक्का वालों का मसला क्या था कि वो खुद को मुसलमान कहते थे। फिर हुआ क्या, कई साल तक हजरत इस्माइल से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में उधर कोई नबी नहीं आया। कहते हैं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कोई दूर पार से गुजरे थे, बहुत सालों तक जब कोई नबी ना आया और कोई किताब ना उतरी तो लोगों के दीन के ऊपर एक छाप पड़ गई। ये बड़ी अहम बात है, हमारा भी बिगाड़ यहीं से शुरू हुआ है। जब बहुत अरसे तक लोगों के पास कोई हिदायत देने वाला नहीं आता तो लोग फिर एक पैरेलल, एक साइमल्टेनियसली एक दूसरा दीन बना लेते हैं, और वो क्या, जो लोग कर रहे हैं, वक्त और माशरे का दीन, वक्त और रिवाज का दीन। अल्लाह चूंकि नज़र नहीं आता, लोगों का दिल करता है हमें एक नज़र आने वाला खुदा मिले, तो कोई उसको मूर्ति की सूरत में पूछता है, कोई उसको स्लीप की सूरत में पूछता है। दिल से अल्लाह को एक मानते थे, अपने बुतों के बारे में क्या कहते थे, कहते थे ये अल्लाह के मददगार हैं, हमारी इनके आगे, इनकी रब के आगे, हमारी सुनता नहीं है, इनकी मुड़ता नहीं है। अब ये जुमले क्या थे, अल्लाह को मानते थे, एक मानते थे। ये भी याद रखिए, मुश्रिकीने मक्का एक अल्लाह को मानते थे। अब 20वें पारे की पहला रुकू जाके आज पढ़े, अल्लाह कहता है पूछो इनसो, मन खलकस समावाती वल अर्दी, किसने पैदा किया आसमान और जमीन को, फसयकूलून अल्लाह, कहेंगे अल्लाह ने किया। अच्छा पूछो कौन है, मैं युजीबुल मुसर्रा इजादाहू, कौन है जो दुख में तुम्हारी तकलीफें सुनता, कहते थे अल्लाह। आसमान किसने बनाए, अल्लाह ने, पहाड़ किसने बनाए, अल्लाह ने। इसका तो इनकार नमरूद तक नहीं कर सका, फिरौन भी नहीं कर सका, क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने ये दावा नहीं किया कि मैंने आसमान जमीन बनाया। तो फिर शिर्क कहाँ से फैला, शिर्क इसमें फैला कि अल्लाह को रब मानते थे, क्रिएटर गॉड मानते थे, लेकिन ये नहीं मानते थे कि उसने हमसे हमारी जिंदगियों का हिसाब लेना है। हाकिम नहीं मानते थे, हकम नहीं मानते थे, किसी हद तक इलाह मानते थे लेकिन उसमें दूसरों को शामिल कर देते थे। तो याद रखिए, प्यारे नबी को अल्लाह ने जिस माहौल में भेजा, आज के इस बिगाड़ के दौर से बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ माहौल था। आज कई लोगों के मुंह से मैंने भी ये बात सुनी, आपने भी सुनी होगी, कहते माहौल बड़ा बिगड़ गया, बड़ी खराबियां हैं, हमारे बच्चों के लिए बड़े फितने हैं, कहीं होमोसेक्सुअलिटी का फितना है, कहीं लिविंग टुगेदर का फितना है, लड़के लड़कियों की दोस्तियां बढ़ी हैं और हलाल हराम का बड़ा फर्क है, कहते हैं ना हम सब। इसके बाद क्या होता है, लोग मायूस हो जाते हैं, कहते अब क्या करें, बस अब हमारे नसीब में यही था और अब ये होगा वो होगा। मैं चंद चीज़ें अगर आपके सामने सिर्फ तकाबुल के लिए रख दूँ ना, तो शायद आप मेरी बात से मुत्तफिक हो जाए। जिस दौर में प्यारे नबी को अल्लाह ने भेजा, वो दौर एक लाइन पे लिख लीजिए और दूसरी तरफ आज का दौर, वो दौर आज के दौर से ज़्यादा खराबियों का शिकार था। चंद मिसालें, बस आप देखिए कि उस दौर में बेटी को पैदा होते ही या तो फौरन मार देते, या कुछ 6 साल, कुछ कबीले थे वो 6 साल का होने तक जीतना रखते। क्या आज कोई इस तरह अपनी बेटी को मार सकता है, पुलिस आ जाएगी। किसी मज़हब का कोई शख्स, दुनिया का कोई मज़हब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता कि कोई किसी की जान ले, ऐसे ही है ना, कत्ल नजायज़ है, हराम है। आज बेटी को कोई कत्ल नहीं कर सकता, तो उस दौर में तो करते थे। दूसरी बात देखिए कि क्या आज औरत को विरासत में हिस्सा मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है, माँ होने के नाते से मिलता है, बेटी होने के नाते से मिलता है, बीवी होने के नाते से मिलता है, कुछ और हालात ऐसे हैं कलाला की सूरत में उसमें भाई बहनों को भी मिलता है, आज मिलता है, अल्लाह के नबी के दौर में नहीं मिलता था। सारी विरासत, सारा विरसा या तो बड़ा बेटा अकेला ले जाता था, पहला बेटा, और वो बेटा जो जंग लड़ने के काबिल होता था, जंग जू, वो कहते थे इसी ने सब कुछ करना है, इसको दे दें, या बाकी बेटों में भी बांट देते थे लेकिन लड़कियों को नहीं देते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। फिर आप देखिए कि तीसरी अगर मिसाल आपको मैं दे दूँ, कल देखिए लोग पत्थर के बुत सामने रख के उनसे मांगते थे, आज खुल के इस तरह का शिर्क तो कम ही है ना। असल बात यह है, आप कहते चलिए बेहयाई की थोड़ी सी बात कर दीजिए। आज बेहयाई बहुत है, हम मानते हैं, और लड़के लड़कियां शादी से पहले साथ रहते हैं, और जो भी इर्द गिर्द की कहानी आप भी जानते ही होंगे। आप कहते हैं कि नबी सल्लम के दौर में क्या हालात थे, 10 मुख्तलिफ किस्म के जिना थे। एक मर्द खुद अपनी बीवी को दूसरे मर्दों के पास भेजता था, मशहूर मर्द, शहर के करता धरता, इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे, और क्या सोचता था, मेरी बीवी इन मर्दों के पास जाएगी, फिर उनसे बच्चा लेके आएगी, तो मेरे नसब में एक आला नसब का बच्चा पैदा होगा। खुद उस अरसे में बीवी से दूर रहता। अब वो बीवी जब प्रेग्नेंट हो जाती उसको वापस ले लेता, फिर बज़ाहर कहने को वो बच्चा इस मर्द का होता था, दूसरों को नहीं बताती थी ये बात, लेकिन अंदर से उसका नुतफा किसी और मर्द के साथ होता था। आज भी ये बेहयाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा लिबरल शौहर भी ये बात नहीं बर्दाश्त करेगा। और एक एक औरत के साथ 10-10 मर्दों के ताल्लुक होते थे। जब बच्चा पैदा होता था उस माशरे में, तो औरत को हक हासिल था शहर के जिस मर्द के ऊपर उंगली रख दे कि ये बच्चा इसका है, मर्दों को मानना पड़ता था। खोजियों को बुलाते थे बाज़ दफ़ा, जो बच्चे के फीचर्स देख कर बताते थे ये शहर के फलां मर्द का बच्चा, नस्ब बिल्कुल ख़राब हो चुका था, बाप का पता नहीं चलता था, इतनी बेहयाई। और सूद सूद ऐसे था जैसे रग रग में पड़ा हुआ, शराब पानी की तरह पी जा रही थी। आप मुझे बताइए आज वो हालात हैं कि ये है? उस दौर के मुताबिक टैली करें तो कुछ उधर सिंपल चीज़ें थी, आज वो ज़रा छुपे खाते में आ गई हैं। आज तो फिर भी कर्टसी है, महज़ब दौर है, रिलीजियस फ्रीडम का नाम है, मजहबी आज़ादी का नाम है, सारी बात का खुलासा के एक बंदे को अल्लाह ने दुनिया में भेजा, सिर्फ और सिर्फ 23 साल। आज आप देखिए 2018 है ना, 23 साल पीछे ले चले, 2008 में आप कहाँ थे सोचिए, मेरा हाल है बहुत सारे नॉर्वे में ही होंगे। पीछे चले जाइए 8 साल और पीछे जाइए तो आप 1996 में कहाँ थे, 20 साल गुजर गए, और उससे 3 साल पीछे चलिए। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, 1993 से लेकर आज तक तकरीबन 23 साल बनते हैं कमोबेश, इस इतने से अरसे में हमने क्या कर लिया? खुद पल गए, बढ़ गए, 4 जमातें पढ़ गए, कैरियर बन गया, किसी को जॉब मिल गई, किसी की शादी हो गई, और जो पढ़ पुढ़ के पाकिस्तान से शादियां होके आए थे उन्होंने 4 बच्चे पैदा करके पाल के पढ़ पोस लिए, हमने ये किया ना। हमारे मर्दों ने हो सकता है शुरू में आके टैक्सी पे काम शुरू किया, तब अपनी टैक्सी हो गई, आके किराए पे घर लिया, तब अपने 6 घर बन गए, यानी हमने भी बहुत कुछ किया। बट एक शख्स अकेला, तन तनहा, यतीम, बाप नहीं, माँ नहीं, दादा नहीं, चचा चले गए, सारे जाती सहारे टूटे। जवानी ऐन जब एक बंदे की होती है, जिस वक्त उमंगें और तमन्नाएं होती हैं, अपने से 15 साल की बड़ी औरत से शादी होती है, और आप मुझे बताइए कि वो शख्स अपने किरदार के साथ मक्का के हर बंदे के दिल में रहता था, सादिक और अमीन कहते थे लोग उस शख्स को। लेकिन 40 साल की उम्र में जब उसके पास अल्लाह का फरिश्ता आता है और इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलक अल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमा अल इंसान मा लम यालम, ये आयतें पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि मेरे साथ तो कोई अनयूजुअल बात हो रही है। तो गोया के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ढल गए, नबूवत का आगाज़ हो गया। कोई ज़ाहरी बहुत प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन एक शख्स तनहा उठा और सिर्फ 23 साल में पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। इंग्लिश में कहते हैं द मैन हु शोक द अर्थ, वो मर्द जिसने दुनिया को हिला दिया। क्या कमाल था आपका, क्या आपने अपनी ज़िंदगी का तरीका और आपका लाइफस्टाइल था, क्या आपके पास इतना वक्त हो गया? 7 घराने भी थे एक वक्त में, 4 बेटियां भी थीं, छोटे छोटे बच्चे भी ज़िंदगी में फौत हो रहे हैं, 5 वक्त के मस्जिद नबवी के इमाम भी थे आप, जंगी जर्नेल भी थे, मदीना के हाकिम भी थे, इकोनॉमिक्स आपने सेट करनी थी, इसके बावजूद वो अपनी हर बीवी के घर जाता है और उनके साथ ज़िंदगी पुरसकून से गुजारता है, और घर में भी सुकून है और बाहर भी। वजह यह है कि आपने अपनी ज़िंदगी का सही इस्तेमाल किया।